أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کو تھا کہ ایک سلام کے ساتھ کتنی سلامتیاں آتی ہیں نا. حادثات سے سلامت ہو سکتے ہیں، چوریوں سے ہو سکتے ہیں، بیماریوں سے ہو سکتے ہیں. تو افشو السلام، آتے جاتے راستوں میں. تو آج کے سیشن کا پہلا جم نوٹ کر لیجئے، سلام کو عام کیجئے. ٹھیک، اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دور قرآن 2025، DQ 2025. اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم ایک اور سیڑھی پہ چڑھ گئے. آج کا پارا نمبر 20. تو ایک کا عدد رخصت ہوا، دو کا عدد شروع ہوا. چلیے محبت سے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کیا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کو محسوس کیا؟ اللہ کرے کہ ہمیں ان دونوں انبیاء کرام کی صحبت حاصل ہو جنت میں، اور اللہ ہمیں بنا دے اس قابل. ہم کہاں ہیں ایسے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کی رحمتوں پہ امید لگا کر بندہ کہتا ہے کہ اللہ، جب دنیا میں تو ہمیں وہ سب دے دیتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، جو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے، تو پھر تو وہاں بھی دے ہی دے گا. ہیں گناہ بہت، لیکن وہاں عطا بہت ہے. وہ غفور ہے، وہ غفار ہے. اللہ سے کہا کرے کہ اللہ، آپ نے میرے اتنے عیب چھپا دیے، وہاں بھی چھپا دیجیے گا. اللہ، آپ نے یہاں میری اتنی کمی کوتاہیوں سے درگزر کیا، قیامت کے دن بھی کیجیے گا. تو وہ سراج منیر کہ جو ایک ایسا چراغ بن کر دنیا میں بھیجے گئے کہ جنہوں نے انسانیت کو اس کا وہ شرف بتایا جو اللہ نے عطا کیا تھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ بے مقصد تھے. آج کے پارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو ہم دیکھیں تو آپ کا یہ کردار دکھے گا کہ آپ نے لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتائی. قرآن تو بار بار آپ کو جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں بتاتا، مرنے کے بعد یہ ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان ہے میرے آپ کے اوپر. ہی گیو اس دی ورتھ آف دس ورلڈ. تو آج کے پارے کے تھیم کا انتظار کیجئے، پہلے چلتے ہیں محمد عربی پہ. اور محمد عربی کے اندر ہم پہنچ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے. یعنی وہ تفکر، وہ تدبر، وہ اندر کی ارج، وہ تڑپ، میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، یہ بت کیوں پوجتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے نا تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. دور قرآن کے دوران تو اللہ نے آپ کو ایک صرف بیپ دکھائی ہے لائٹ کی، دور سے ایک روشنی ہوتی ہے نا سمندر میں، تو بحری جہاز اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ دور قرآن جو نا ایک بیپ تھی. اور اب تو مجھے لگے گا 20 پاروں کے بعد یوں پھسلے گا تو اسے جیسے ریت پھسلتی ہے. ہر پارا پڑھانے کے بعد یقین ہی نہیں آتا کہ یہ پارا ہو گیا، اور بے چینی ہوتی ہے کہ اگلا پارا کب پڑھائیں گے. یہ سارے سٹیپس ہدایت کے رستے میں آتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چلبلے پن میں اچھلتے کودتے اور آپ کو ایک دم ہدایت مل جائے. ہدایت کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی ان میں سے گزر گئے. اب خواب آنے شروع ہے. جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی، تو آپ بہت فکر مند ہوتے. آج بھی ہر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو قرآن کو شعور سے پڑھتا ہے. ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا. آپ اپنی فیلنگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شیئر کرتے. یہاں آج کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اور خدیجہ کا کردار آپ کے لیے ضرب المثل ہے کہ اچھی بیویاں اپنے شوہر کی ہر طرح کی سیٹسفیکشن کرتی ہیں. کوئی بات، کوئی ڈاؤٹ ہے، جاب میں یہ ہو رہا ہے کہ میری جاب چلی نہ جائے، مجھے یہ نہیں ہو جائے، وہ نہ ہو، جو باتیں نا شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے. رشتہ ہی اس طرح کا اللہ نے بنا دیا. سارے رشتے دنیا کے جمع کریں نا، ماں بچے کا، بھائی بہن کا، اور جو بھی، تو ان سب کو جب جمع کر کے ایک جگہ کر دے تو وہ شوہر بیوی کا رشتہ بنتا ہے. کیونکہ بیویاں ماؤں کی طرح کیئرنگ بھی ہو جاتی ہیں، شوہر باپوں کی طرح سپینڈ کرنے والے بن جاتے ہیں. टेक केयर करते हैं बुढ़ापे में, और कुछ नहीं ना तो एक दूसरे को उठा उठा के गोलियां दे रहे होते हैं, ये खा लो तुम्हारी दवाई का वक्त आ गया, चलो आओ तुम्हारा हाथ में पकड़ता हूँ, एक को नजर सही नहीं आता, दूसरे को सुनना सही नहीं आता, दोनों मिलके अपनी कमी पूरी करके तवाफ करने निकल जाते हैं, ये होता है। हज़रत खदीजा को आप जाकर सुनाते हैं कि आजकल मेरे दिल पर कुछ बीत रही है, ये सोचते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी बातें बड़ी तवज्जो से सुनती, और बीवियों को सुननी चाहिए, शोहरों को भी सुननी चाहिए, तो दोनों को सुननी चाहिए, ये रिश्ता बराबर का होता है। खैर, ढारस बंधाती हैं आपकी, तसलियाँ देती, जिसको आप अपनी जुबान में कह सकती हैं कि आप फिक्र ना करें, यानी आपको लगता था कि मुझे ऐसे वसवसे और ख्याल क्यों आ रहे हैं। खैर, इसी दौरान क्या हुआ, रमजान का महीना आया, आप फिर हस्बे आदत गारे हिरा में चले गए, हर चीज से हटकर गौर व फिक्र और इबादत में लग गए, किसी किसी वक्त घर जाते और एक दूसरे से आंखें ठंडी करते, खाना पानी कुछ भी होता, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों को बहुत देते थे, मोहताजों को देते थे, सखावत बहुत थी। रमजान के कुछ दिन गुजर गए, एक रोज आप गारे हिरा में आराम फरमा रहे थे, जिब्राइल अलैहि सलाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफा मिले तो अपनी असली शक्ल में नहीं मिले, एक इंतहाई हसीन और जमील किरदार था कोई, और जिब्राइल बाद में भी जब आते रहे ना तो किसी रूप में आते थे। फरिश्तों को अल्लाह ने जो खूबियाँ दी हैं उसमें एक खूबी है कि ये ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, शक्लें बदल लेते हैं, तो कहते हैं कि एक इंतहाई खूबसूरत शक्ल थी, फरिश्ते ने कहा इकरा, आप घबरा गए, आपने कहा कि मामा आना बिकारियन, कहीं आते माँ अकराओ, मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसके तो आपको अपने ऊपर एक बोझ महसूस हो रहा है, और आपको ऐसे लगा कि मेरा जिस्म भिज रहा है, फिर फरिश्ते ने छोड़ा, फिर कहा इकरा, ऐसी कैफियत एक से दो बार हुई, तीसरी बार हुई, आपको अपना सांस घुटता हुआ दिख रहा है, और जब तीसरी बार आपको फील हुआ ऐसा घुटन, तो उसके बाद आपकी जुबान पे अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल कर दी, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक खलक अल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुक अल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मालम यालम, सूरत अलक की 5 आयतें। पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया इंसान को खून की भुटकी से, पढ़ो और तुम्हारा रब मेहरबान है जिसने कलम से सिखाया इंसान को वो कुछ सिखाया जो इसे मालूम भी नहीं था, पहली वही जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया, वो वक्त आ गया जिसका इंसानियत को इंतज़ार था, वो मसीहा इस दुनिया में आ गया जिसका यहूद और नसारा को भी इंतज़ार था। हालात और वाक़यात बता रहे थे कि इस वक्त इंसानियत जिस खराबी का शिकार हो चुकी है, जो बुराइयां आ चुकी हैं, अगर इस वक्त अल्लाह ने किसी को मसीहा बना कर ना भेजा तो हो सकता है कि दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाए। आपके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, घबराहट भी थी, खौफ भी था, हैरानी भी थी, जो एक नई फीलिंग आती है, और आज आप अपने ऊपर लेकर सोचें, जब पहली दफ़ा कोई किसी भी ऐसी कुरान की क्लास में आता है जहाँ खास पे तफसीर चल रही हो, अभी तो दोहरा कुरान है ना, ये तो एक गोल ओरिएंटेड क्लास होती है ना, मेरा भी गोल होता है कि पारा पूरा करना ही करना है, और आपके भी दिल में चल रहा होता है बैक ऑफ माइंड, हाय अभी रुब नहीं हुआ, हाय ये कब पूरा होगा, हाय अभी तो आधा भी नहीं हुआ, हाय टाइम कम रह गया, मैं सर फीलिंग आपकी पड़ रही होती है, फिक्र नहीं करें, सबकी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर दिन पारा पूरा हो रहा है ना, थोड़ा वक्त आगे पीछे 19-20 का हो जाए तो क्या हुआ, यही जिंदगी है, यही अल्लाह ताला आपको सिखाता है कि ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे होता है जिंदगी में, ये फ्लैक्सिबिलिटी जो होते हैं ना, ये कई जगह तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, लेकिन नॉर्मली ये एक अच्छी बात होती है, आप खुद भी थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, दूसरों को भी बेनिफिट देते हैं, ये जो प्लस माइनस ना टिक टिक, घर में भी कोई हॉस्टल की फीलिंग देने लग जाए ना, यहाँ नहीं रखिए, वहाँ नहीं रखिए, ये ना कीजिए, ये क्यों कर दिया, तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, मेहमान भी परेशान हो जाएंगे कि ये इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, नहीं इट्स फाइन। खैर, अल्लाह के नबी सल्लम की बात पे वापस आ जाते हैं, आप दिल में कुछ बातों में थे, सोच रहे थे ये कौन था, उसके बाद वो मंजर खत्म हो गया, कौन मुझे बता कर गया, आप तेजी से गार से बाहर आए, जिस्म आपका कांप रहा है, दिल में बार बार ख्याल आ रहा है कि शुरू में तो जो ख्वाब नजर आते थे वो सही हो जाते थे, अब ये मेरे साथ नया क्या मामला शुरू है, अब फील कीजिए, ये मैं आपको क्यों बात बता रही हूँ, ह्यूमन लेवल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, मैं आपको जो फीलिंग देने वाली हूँ ना इस दौरे कुरान में ह्यूमन लेवल ऑफ प्रॉफिट, बट इंसानों में बेहतरीन इंसान कि वही अतिनमा यू ही वली कैफियत। तो खैर आपको इसलिए भी ये बताना ज़रूरी है कि जब हम खुद भी कुरान और हदीस और दीन की तरफ आते हैं ना, तो हम भी इस तरह सटपटाए हुए आते हैं। आप फील किया करें उन लोगों को जो बेचारे कभी किसी मस्जिद में गए ही नहीं, किसी ने कहा नहीं, किसी का बाप नहीं था, कोई बाप नमाजी नहीं था। अब आज अगर वो किसी दोस्त या किसी उस्ताद या किसी मेंटोर के कहने पे पहुंच गया, तो क्या आप उसके कपड़ों पे देखेंगे, उसके टैटूज देखेंगे, आप उसके नीज तक के ट्राउजर को देखेंगे? नहीं। ये इतना बड़ा समंदर है कि जिसके किनारे पे खड़ा बंदा हमेशा फील कर रहा था मैं डूब जाऊंगा, मैं पी नहीं सकता इसको। ये ओशन है। ये कुरान जो है ना, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मालूमात का भी, जज्बात का भी, ताल्लुक बिल्ला का, ताल्लुक बे रसूल का। ये कुरान पता क्या आपको, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग से आपको बताने वाली हूँ कि ये कुरान दुनिया में वाहिद चीज़ है, द ओनली थिंग जो मखलूक नहीं है। कुरान इज़ नॉट अ क्रिएशन। इसके अलावा इंसान, फरिश्ते, पत्थर, समंदर, बेजान जानदार, कीड़े मकोड़े, हशरात, हर चीज मखलूक है। वो खालिक हर चीज मखलूक, और बीच में कुरान बल हुआ कलाम अल्लाह, स्पीच ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। अल्लाह के वजूद के साथ महसूस करे ना, सिर्फ समझाने की खातिर। अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, अगर कोई रिकॉर्डिंग ना हो, कोई ऑनलाइन पे ना हो, बस मैं आपके साथ इस हॉल में बैठी ये पढ़ा रही हूँ, तो मेरे ये लफ्ज़ आपके कानों तक टकरा रहे हैं। आपके और मेरे बीच का बॉन्ड क्या है, ये लफ्ज़, ये आवाज़। बाहर से जो सुन रहे हैं इस वक्त भी, उनको मेरे साथ क्या फीलर आ रहा है, मेरे लफ्ज़ों का आ रहा है ना, वीडियो तो है नहीं है। तो अब मेरे अल्फाज सुनकर कहीं भी वो मेरी आवाज़ अगर बाद में सुने, वो पहचान लेंगे ना ये इनकी आवाज है। अच्छा, ये बात इन्होंने हमें सुनाई थी, तो जिसने वो बात सुनाई थी हमें याद नहीं आता था। हाँ, ये बात मेरी दादी ने मुझे बताई थी, कई दफा आप कहते होंगे ये बात मेरी सास ने मुझे सिखाई थी। तो जब किसी के साथ इस तरह का एसोसिएशन होता है ना, तो उसकी आवाज के साथ, उसकी बात के साथ, उस काम के साथ हमें उसका ख्याल आने लगता है। इतनी बात एडजस्ट होगी। कुरान अल्लाह के वजूद का हिस्सा है। हम इसमें कुछ नहीं कहते, अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह की आवाज़ है, कुछ कहने से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ना कैफियत, ना तमसील, ना कुछ, बल्कि बस कह दीजिए कि जैसा वो है वो वही है। सलफ सालेहीन अल्लाह ताला की सिफात बताते हुए बहुत केयरफुल होते थे। तो कुरान को पढ़कर ये जो अंदर एक उथल पुथल होती है ना, ये नबी के साथ भी हुई थी, बिकॉज ही वॉज ह्यूमन। हाँ, उन्होंने मुजाहिदों से, इबादत से, गारे हिरा में गौर व फिक्र से अपने अंदर के नफ्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। आपके शैतान को भी अल्लाह ताला ने मुसलमान कर दिया था कि वो आपको बुराई का हुक्म नहीं देता था, लेकिन आपके ऊपर ये कैफियत हुई। अब इसमें कई चीज़ें आपको तफासीर में, सीरा की बुक्स में दिखती हैं, कई रिवायत से ये भी मिलता है कि आप अभी इसी कैफियत में थे तो एकदम फिर आपको आवाज़ आई, आपका नाम पुकारा गया, आपने देखा तो वो वही फरिश्ता था जो इंसान की सूरत में था। लेकिन हम इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ते, बस इतना कह दीजिए कि आप जब इतने घबराए तो बिल आखिर फिर आप बीबी खदीजा के पास आ गए। बीबी खदीजा परेशान थी कि आज आप घर क्यों नहीं आए। मामूल के मुताबिक जिस वक्त पे आते थे थोड़ा देर से आए, कहीं भी ना मिले आप, और जब आप वापस आए तो जम्मेलूनी जम्मेलूनी, मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे कुछ उड़ा दो। फील कीजिए, अगर आप में किसी को जाड़ा लगे, जिसको आपकी जुबान में कहते हैं, ठंड लग जाए, बुखार महसूस होता है, सर्दी लग रही है, उस वक्त क्या दिल कर रहा होता है? कोई हमें मोटा कंबल, कोई चादर, कोई रजाई दे दे और हम उसमें आ जाए। और ये इनसिक्योरिटी की भी कैफियत होती है कि मेरे ऊपर कुछ आ जाए ताकि मैं जरा सा नॉर्मल अपने आप को महसूस करूं। हाँ खदीजा ने जब आपकी हालत देखी तो परेशान हो गई। आप एक बीवी होने के नाते अपने ऊपर ले ना, शौहर खुदा ना खासा इस तरह कांपते हुए आए, और तो आप तो फौरन कहेंगी ना बुखार हो गया, डॉक्टर पे नहीं गई। खासे खदीजा के दिमाग में बहुत से ख्याल आ गए, तबीयत खराब हो गई, आपको क्या हुआ। लेकिन जब थोड़ी देर गुजरी और आप मुतमईन हुए, खौफ कुछ दूर हुआ, तो फिर आपने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को सारा वाक्या सुना दिया, और आप इतने उस वक्त अपने आप को वीक महसूस कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। हजरत खदीजा बहुत समझदार खातून थी, एक तो जीरक थी, मतलब उम्र में भी मेच्योर थी। वो घबराई नहीं, कहने लगी मैं आपको बताऊं, आपको बहुत बड़ी इज्जत मिलने वाली है। चेहरे पे यकीन भी था और इत्मीनान था और मुस्कुराहट थी, और कहने लगी आप बेफिक्र हो, मेरे चचा के बेटे हैं, आइए उनके पास चलते हैं। ये भी देखिए सीखने की बातें। और इस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी बनेंगे। नहीं, हजरत खदीजा को भी कुछ सोचने लगा कि आप तो सच बोलते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप अमानते अदा करते हैं, मजबूरों और बेकसों का सहारा बनते हैं, मेहमानों की खातिर तवाजो करते हैं, हक का साथ देते हैं, अल्लाह आपको कैसे जाया करेगा। इन बातों से आपको बहुत ढारस मिली, बेचैनी दूर हुई, चेहरे पे खुशी और इत्मीनान हुआ, और आपने फिर उनकी दिलजोई पर उनका शुक्रिया अदा किया और सो गए। हजरत खदीजा के दिल के अंदर एक खुशी थी, एक ऐसे शख्स की बीवी बनने वाली है वो औरत जो सिराज मुनीर है, जो रहमतुल आलमीन है, जिसका किरदार पढ़ते पढ़ते आप क्या महसूस नहीं करने लग गए कि हो ना हो मैंने भी अपने अंदर ही आते डालनी है। बस वो खुशी, मोहब्बत, फिक्र, ये सब कुछ साथ था। कहने लगी चले इनको अपने चचेरे भाई वरका बिन नौफल के पास ले जाती हूँ, कुछ उनसे पूछते हैं, जैसे आप कहते डॉक्टर को दिखा दे, हकीम को दिखा दे। खैर, वरका नौफल के बेटे थे और बहुत हकीम और दाना इंसान थे, और कंपेरिटिव रिलीजन का काम करते थे, यानी मुख्तलिफ मजाहब को गोया कि उन्होंने खंगाल दिया था। बारीक बीनी से हर एक का जायजा लिया, यहूदियत को देखा उसकी तरफ झुकाव हुआ छोड़ दिया, ईसाइत की तरफ गए उसको इख्तियार किया, इंजील पे नज़र रखी, अरबी में उसका तर्जमा भी कर रहे थे, आखिरी मज़हब उस वक़्त तक यही था। खैर, जब हज़रत खदीजा उनके पास आई, सारी कहानी सुनाई जो आप पे बीता था वो बताया, ये सब कुछ सुनकर वो बोले पाक है पाक है, कसम है इस जात की जिसकी मुट्ठी में वरका की जान है, खदीजा अगर तुम्हारी बात सही है तो ये वही नामोस, नामोस जिब्राइल को कहते हैं ईसाइत में, नामोस है जो मूसा के पास आता था, बखुदा वो इस उम्मत का नबी होगा, इससे कहो डरे नहीं, जो कुछ कर रहा है वो करता रहे। अब क्या था, बीबी खदीजा खुशी से बेताब हो गई, कहने लगी मुबारक हो मुबारक हो। जरा बातें हुई बीच में सब बता दी, पहले हजरत खदीजा ने खुद जाके बात की, ये भी एक अच्छा आइडिया सीखने वाला। कहने लगी वो आपसे मिलना चाहते हैं, और वो क्यों मिलना चाहते हैं वो बाद में होगा, लेकिन कहने लगी कि मैं आप पर ईमान लाती हूँ। सबसे पहली तस्दीक इस्लाम के नाम पे जो मिली वो एक औरत से मिली, सबसे पहला मर्द नहीं औरत, और औरत क्यों, क्योंकि वो घर में थी, लेके आपको गई, खाना काबा का तवाफ किया। कहते कि रास्ते में बरका मिल गए, देखते ही बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या देखा, वो भी मान गए। फिर आपने पूरी दास्तान सुना दी, फिर उन्होंने कहा कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम इस उम्मत के नबी बनोगे, और वही बात जो पहले हजरत खदीजा को कह चुके थे, लेकिन इजाफा क्या किया कि अपने नबी होने का जब तुम ऐलान करोगे तो लोग तुम्हें झुठलाएंगे, सताएंगे, घर से बेघर कर देंगे, जंग करने से भी नहीं चुकेंगे, काश इस वक्त मैं जिंदा होता, यानी मैं तुम्हारा साथ देता। आपने फरमाया क्या लोग मुझे बेघर कर देंगे, लोग तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे तो लोग सादिक और अमीन कहते हैं, हैरत हुई आपको। तो उस पे फिर वरका ने कहा हाँ, जब भी कोई नबी आया कौम ने इसके साथ यही सलूक किया, अगर वो दिन देखने नसीब हुए तो मैं ऐसी मदद करूंगा जिसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर आपकी तरफ आए, आपके सर मुबारक पर शफकत से बोसा दिया, और इसके बाद फिर प्यारे नबी लौट आए। मगर अब आप बहुत फिक्रमंद और उदास रहते थे। बार बार सोचते थे कि मेरे कंधों पर नबुवत का बोझ आ पड़ा, इसका इंजाम क्या होगा। मैं आप सबको एक छोटी सी बात दूं, जिंदगी में जब कोई चेंज आता है, कोई नई चीज आती है, तो हम भी ऐसे महसूस करते हैं। बस आप देखिए, आप पहले कोर्स नहीं कर रहे थे, करना शुरू किया, एक दो दिन मुश्किल हुई ना, फिर सेट हो गए। दौरे कुरान में शुरू में आना मुश्किल था, अब आसान लगता है। इसी तरह आप सोच रहे हैं कि मैं तफसीर कोर्स कैसे करूंगी। ठीक है, बिल्कुल बशरियत के तकाजे से आपको मुश्किल लगेगा। हाय, मुझे लफ्जी तर्जमा कैसे याद होगा। हाय, मैं हफ्ते में 3 दिन कैसे बैठूंगी इतनी देर कंप्यूटर के सामने। ये सारे वसवसे आपके जहनियन है, लेकिन उन लोगों से गवाही ले लीजिए जो इस रास्ते से गुजर चुके, कि ये सब गुजर भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। शादी का कितना शौक होता है, जब होती है तो 1-10 दिन के बाद वो सारा जोश ठंडा होता है, तो फिर बंदे को कई मसले नजर आते हैं। सब ठीक भी हो ना, फिर भी टाइम लगता है। एडजस्टमेंट हमेशा टाइम लेती है, सब्र होता है। अल्लाह के नबी को जो सबसे बड़ी फिक्र थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे अदा करूंगा, मैं लोगों को कैसे बुलाऊंगा, सीधी राह कैसे सुझाऊं। ये तो गुमराह है, हक से भिदके हुए हैं, अल्लाह से बेजार है, बुतों के परस्तार हैं, बदी के अलमबरदार हैं, नेकी से बिल्कुल ही ये दूर हो चुके हैं। और फिर गजब ये है कि इनको अपने ऊपर मान बहुत है कि हम बहुत ठीक कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो आप कह लें कि दिल में ख्यालात का एक तूफान उठा, और जो कैफियत इसके बाद हुई वो क्या कि आप वही का दोबारा इंतजार करने लगे। आप भी इंतजार कीजिए कि इसके बाद क्या हुआ। चैन सिर्फ अब एक ही चीज में आएगा, और वो ये है कि इस किताब के साथ, गहरे ताल्लुक के साथ। तो ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किरदार जो उस वक़्त हमारे सामने आया। चलिए दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों दुरूद और रहमतें, कि जिन्होंने अल्लाह का ये पैगाम अपनी जान पे लेके हमारे तक पहुँचाया। सिर्फ पहली वही की कैफियत से ही आप देख रहे होंगे कि ये कोई आसान टास्क नहीं था, और आज भी वल्लाह ही ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए आसान होता है, उतना आसान होता है जितना जो अल्लाह सुबहाना ताला चाहता है। ये मैं आपको बता दूं, ये अल्लाह सुबहाना ताला का काम है। सूरह क़यामत में आप खुद भी पढ़ेंगे, क्या नबी आप गम ना किया करें, इन्ना अलैना जमाऊ। कुरान की कैफियत को अगर आप दिल पे नहीं ले पा रहे ना, तो 6 दफा कुरान पढ़ के भी आप फिर भी अधूरे, पक्की बात है अधूरे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जो हकीकत बताई इस पारे के थीम के साथ, वो क्या है, मैं तो दुनिया में एक राह चलते मुसाफिर की तरह हूँ। तो आज का अखलाके नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर अगर गौर करें तो ये मालूम होता है कि आपकी ज़िंदगी नहायत सादा थी। आप चाहते तो आपके लिए दुनिया भर की दौलत समेट दी जाती, मगर आपने ना सिर्फ घर से बाहर बल्कि घर के अंदर भी नहायत सादा जिंदगी गुजारी। जरा सा अल्लाह के नबी के हुजरे को देखें, आइए अल्लाह के नबी के हुजरे मुबारक को देखते हैं, आपका बिस्तर कैसा था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह का बिस्तर जिस पर आप सोया करते थे रंगा हुआ चमड़ा था, रंग कर देते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। वो बिछाते थे खाल जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। ये बुखारी की रिवायत है 6456। एक मरतबा हजरत उमर बिन खत्ताब आपके घर में आपसे मिलने के लिए गए, दरवाजे पर आपका एक गुलाम बैठा हुआ था। उससे कहने लगे, मेरे लिए अल्लाह के रसूल से इजाजत तलब करो। गुलाम अंदर गया और अल्लाह के रसूल से अर्ज की कि दरवाजे पर उमर बिन खत्ताब हैं जो अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, जाओ उमर से कहो कि अंदर आ जाए। हजरत उमर फारूक जब अंदर दाखिल हुए तो देखा आप खजूर की चटाई पर लेटे हुए थे। आज नमाज नहीं कोई पढ़ता खजूर की चटाई पर। आपके पहलू पर चटाई के निशानात पड़े हुए थे। आपके सर के नीचे चमड़े का एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल, यानी कोई कॉटन नहीं, कोई मेमोरी फॉर्म नहीं था, खजूर की छाल, और चुभती होगी अंदर से वो भरी हुई थी। अल्लाह अकबर, ये बुखारी की रिवायत है 5843। इसी तरह 4913 बुखारी में एक और वाक़या जो मुस्लिम में भी है 1479 पे, कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कैसी थी। हज़रत उमर आपकी खिदमत में हाजिर हुए, और आपकी बेटी हज़रत हफ्सा अल्लाह के नबी की ज़ौजा थी, अहलिया थी, अज़वाजे मुतहरा थी। उन्होंने आपको देखा कि आप खजूर की नंगी चटाई पर लेटे हुए हैं, चटाई पर कोई चादर या बिछौना भी नहीं, सर मुबारक के नीचे चमड़े का तकिया था जिसमें खजूर की छाल थी, यानी वही सेम तो कैफियत, आपके पाँव के उस कीकर के पत्तों की एक गठरी पड़ी हुई थी, आपके सर के पास चंद चमड़े लटक रहे थे, आपके पहलू पर चटाई के निशानात थे। हजरत उमर फारूक ने ये मंजर देखा तो बेख्तियार रोने लगे, क्योंकि जिससे आपको मोहब्बत होती है ना, आपको उसका कंफर्ट बहुत अजीज होता है, आप उसको सुकून देना चाहते हैं, आप उसको तकलीफ में देख नहीं सकते। उसको तकलीफ हो रही हो कि ना हो रही हो, आपको हो रही होती है उसकी कैफियत देख के। आप थक गए, आपके पाँव सूज गए, आपको ये हो जाएगा, आप जाइए सो जाइए, करते ना हम सारा दिन यही मोहब्बत ही तो हम समेट रहे होते हैं, है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर आप क्यों रो रहे हैं, यहाँ से मोहब्बत भी देखिए। खैर, जवाब में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कैसरो किसरा किस कदर ऐश और इशरत में है, और आप अल्लाह के रसूल होने के बावजूद किस कदर उसरत और सादगी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, यानी तंगी वाली जिंदगी है। फाइन्ना माल उसरी यूसरा वाला उसर है, या एक होता है इशरत, उसका ऑपोजिट है ये उसरत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर क्या तुम इस बात पर मुतमईन नहीं कि इन्हें दुनिया मिली और हमें आखिरत मिलेगी। सारा आज का पारा आई से एक वाक्य में, एक और सुन लेते हैं वाक्य। सिर्फ आपका घर कैसा था, होम स्वीट होम। साहबी हैं अब्दुल्ला बिन मसूद, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल खजूर की चटाई पर सोए, आपके जिस्म पर चटाई के निशान पड़ गए। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आपने हमें क्यों इजाजत ना दी, हम आपके लिए कोई नरम बिस्तर बिछा देते। आपने फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक, मेरी और दुनिया की मिसाल बस ऐसे है जैसे एक सवार, ट्रांजिट लाउंज वाला पैसेंजर, शदीद गर्म दिन में रवाना हुआ। रास्ते में इसने एक दरख्त के साए तले थोड़ी देर आराम किया, फिर उठा और साया छोड़कर चला गया। ये तिर्मिजी की रिवायत है 2377। हमें है कोई जरा सा भी अपने नबी के साथ मिलता हुआ रंग अपने अंदर नजर आ रहा है? हम तो बिल्कुल बदल गए। पैसा हमारे हाथ में हो ना हो, दोनों बराबर हैं, हमें कंफर्ट चाहिए। जूता कंफर्टेबल, कपड़ा कंफर्टेबल, फुला 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 फुला। अपनी जात पे खर्च करते हुए कभी बंदा अपनी वर्थ तो सोचे। याद रखिए, मोमिन के इस्तेमाल होता है, हौसला नहीं होता। एक दिरहम, एक दिनार, एक रियाल, एक रोन, एक डॉलर, एक पाउंड, एक यूरो, वो अपनी जात पे लगाने से पहले 10 दफा सोचता है कि ये मैं क्यों लगाऊं, मेरी औकात नहीं है इसको लगाने की। और जब बंदे के सामने मकसद इतना बड़ा हो, जब उसके पास इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, इतने बड़े बड़े प्लान्स हों, तो वो अपनी जात पे लगाए। देखिए, आज आपको पता है क्यों दीन के काम रुके हुए हैं बीच में, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस परेशान हैं, क्यों मदरसे हैंड टू माउथ हैं, क्यों चंदा सिस्टम है, क्यों लोग नहीं। कई और वजूहत होंगी मैं मानती हूँ, लेकिन शाह खर्चियाँ भी बहुत हैं। ये शाह खर्चियाँ जो होती है ना, एक दिन आता है कि बैंकरप्सी पे ले आती है, बंद हो जाती है, चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सके। इतने लाखों आते हैं और जाते हैं, ट्रांजेक्शन्स में होते हैं, लेकिन एंड पे उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि जो आता है उसमें से ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। तो हमें से हर एक को अगर अल्लाह ने कहीं कोई जिम्मेदारी दी है ना, तो 10 दफ़ा सोचे फिर खर्च करें। और अल्लाह का शुक्र है, कसम तो नहीं दी जा सकती, हाँ गवाही दी जा सकती है कि नूरुल कुरान में आई हुई एक एक चीज़, 1 रुपए की हो, 1 डॉलर की हो, या वो लाखों की हो, उसके बारे में यही चेक एंड बैलेंस होता है कि ये जाया ना हो, ये किसी के जाती इस्तेमाल में ना आ जाए, इससे कुछ चंद लोग ही बेनिफिट ना लेने लग जाए, इसमें कोई फेवरेटिज्म ही ना होने लगे, क्योंकि ये जवाबदेही बहुत बड़ी है। इसी तरह एक आखिरी रिवायत सुन ले अनस बिन मालिक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पुराने से खस्ता खाल पालान वाली ऊँटनी पर हज को गए, यानी जिस ऊँटनी पे आप बैठे ना, तो उसके ऊपर वो जो चादर डली होती है, पालान जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल टूटी हुई थी। आपके जिस्म अथर पर एक चादर थी जिसकी कीमत 4 दिरहम भी न थी। इब्ने माजा की रिवायत है 2890। तो अब आप और मैं अपने लिए गोल ले लें, अपनी जिंदगियों को सस्ता करें। जब कोई चीज़ आपको महंगी लगे ना, तो छोड़ दें, सस्ती हो गई। किसी ने एक बड़ा अच्छा इलाज बताया कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है ना, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्यों छोड़ देता हूँ कि मेरे लिए सस्ती हो जाए, मैं सस्ती ले लूंगा उसके बजाय कोई और कर लूंगा। और दुनिया में ना हर चीज़ का अल्टरनेट है, अल्लाह की ज़ात का कोई और बदल नहीं है। आप अल्लाह को छोड़ के किसी और चीज़ के ऊपर नहीं चल सकते, इसलिए इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए, अब इस सारी बातों को सामने रखते हुए आज के पारे पे आते हैं।